पेश है 32वां सर्ग। षोड़शी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे दो घंटे के लिए चले जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। रामेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगती वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के फाइल थे, यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहर रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सकें। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें एक दो दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपये न भी मिलें तो भी इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो, कुछ पता तो लग जाएगा। कुछ भी न हो तो रुपए ही तो आ जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं, पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उसे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपये देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं न आ सकी, दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है न, तुमने मुझसे न कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। भाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 दफे खाने को चाहिए, 3 दफे पानी पीने को, बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मुंशी जी ने दीन नेत्रों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोंके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं, अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहां जाते हैं बचकर बचा, ऐसा ऐसा रगे दूं कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह होती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहाँ भी अहल मद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वह वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नेत्रों से उनकी ओर देख कर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है, अब वहाँ न जाऊँगी, नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूँगी, देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उचित श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन, इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उल जुलूल बकने लगते हैं, उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया, इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे, पेट भक हो गया, पेट भक हो गया, आओ कमरे में चलें। रतन मेरे साथ न चलोगी जालपा, आज तो न चल सकूंगी बहन, कल आओगी कह नहीं सकती, दादाजी का कुछ हल्का रहा तो आऊंगी, नहीं भाई जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह कर है, मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन, मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी मैं न जाने दूंगी, मुन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ न पता चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल एक हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया, मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है, अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, अभी जाने का नाम मत लेना। रतन का भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अखबार ने लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मेरे लिए वहाँ क्या रखा है, बंगला भी क्यों बेचूं, 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफ़ी है, मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मुहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी। जालपा ने शतरंज के नक्शे पर भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई, बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार हैं, 50 रुपये कर दो, रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो। रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा, कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है, मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा, मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ, जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ते चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था वहाँ जाना अच्छा न होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है पूरी, मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊँगी, तुम्हें आज खत लिख रखूँगी, किसके पास भेजूँ, वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए, वहाँ तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे, तो प्रजा मित्र ही को लिखूंगी, लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा, होगा क्या, 50 रुपये ही तो ले जाएगा, दमड़ी की हड़िया खोलकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धांस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते, मेरे साथ आध घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने निमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं, कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि रामेश्वरी पंखा लिए अपने को झेलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी, मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है, क्या आटा पीस रही थी। रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है, बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर, मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती, मजूरीने तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं, मैं तो एक आना शेर देने को राजी हूँ पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है। रामेश्वरी ने जहेब से मुस्करा कर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं एक कौर भी, बहू पीसने जा रही थी लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता, मुझे रात भर चक्की पीसना गांव है, उनके पास घड़ी भर बैठना गांव नहीं। रतन जाकर जात के पास एक मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो जात न चलता होगा माँ जी, लाओ छोड़ा सा गेहूँ मुझे दो, देखूँ तो। रामेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैं बहुत दिनों तक पीसा हूँ माँ जी, जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी, मेरी अम्मा लाओ थोड़ा सा गेहूँ, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूँ तो लाइए। रामेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूँ घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए मैं आपके भंडार में देखूँ, गेहूँ होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हाँड़ियों में टटोल टटोल कर देखने लगी, एक हाँड़ी में गेहूँ निकल आए, बड़ी खुशी हुई, बोली, देखो माँ जी निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूँ निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। रामेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू वह जात पर बैठी गेहूँ पीस रही है, उठाती हूँ उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए, चलिए जरा देखूँ। रामेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूँ, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूँ पीसने में मग्न थी, विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओ री आटा महीन हो, नहीं पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया, बहरों की भांति और निश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूँ बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, धेले शेर। रतन, धेली शेर सही। जालपा, मुंह धोआओ, धेले शेर मिलेंगे। रतन, मैं यह सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। जालपा, आ जाऊँ मैं भी खिंचा दूँ। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊँ। जालपा, अकेले कैसे गाओगी। रामेश्वरी से, अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जात पर जा बैठी और दोनों जात का यह गीत गाने लगी, मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे, जात की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय से इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे, न शोक का भार था न वियोग का दुख, जैसे दो चिड़ियां प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों।